सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
प्रमोद काले जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
प्रमोद जी। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आज एक और बड़ी सफलता हासिल की है और इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है, जो कि बहुत ही खास क्षेत्रों में हमारी मदद करेगा, जैसे कि कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। आज हम इस बात करते हैं तो अंतरिक्ष क्षेत्र हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, जिसमें भारत पूरी तरह से लगा हुआ है कि हम इसको एक बड़ा आकार देंगे, अंतरिक्ष व्यवस्था को बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाएंगे और अंतरिक्ष क्षेत्र को लगातार विस्तारित करेंगे, जिसमें निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी कर सकता है। इन सभी को आप किस तरह से देखते हैं आज के समय में?
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आज का जो छोड़ा गया वो सफल हो गया है। अभी उपग्रह जब उसकी कक्षा में जाके पहुंचेगा तब पता चलेगा किस तरीके से वो चल रहा है, मगर ये लॉन्च व्हीकल के लिए, GSLV लॉन्च व्हीकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। अभी आगे जाकर देखना होगा कि हम किस तरीके से और भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए स्टेट में एक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बनाया था, उसी तरह से सभी स्टेट्स में हर एक जगह पर जब जहां भी सहज हो ऐसी जगह पर एक स्पेस के लिए काम करने वाला इंडस्ट्री का क्लस्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो हम देख रहे हैं कि स्पेस के लिए जो भी कुछ काम करते हैं ऐसी लगभग 450 से 480 तक की एक अंदर इंडस्ट्रीज है जो इसमें भाग ले रही है, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। और ये करने के लिए ऐसे क्लस्टर जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जहां भी कुछ स्पेस के लिए काम होता है तो उनके लिए इसका जो टेस्ट एंड इवेल्युएशन होता है उसके लिए सब पूर्ण साधन नहीं होते हैं, तो ऐसे क्लस्टर बनाए कि जहां कुछ गवर्नमेंट की मदद से, इंडस्ट्रीज की मदद से ऐसे क्षेत्र बन जाए कि जहां कोई भी जाकर अपनी जो भी कुछ सामग्री बनाई हो उसका टेस्टिंग कर सके।
प्रमोद जी, अगर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को हम थोड़ा विस्तार से देखें, गहराई से देखें, तो हमें ये नजर आता है कि पिछले एक दशक में यानी कि 10-12 साल में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप की संख्या एक से बढ़कर 450 के आसपास तक पहुंच गई है और लगभग $9 अरब कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो भी इतना पहुंच चुका है। तो ये जो तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी है तो हमें वैश्विक पैमाने पर कहीं आगे लेकर के जा रही है, तो ये सफलता आप भारत के नजरिए से किस तरह से आंकते हैं?
ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जो स्टार्टअप से उन्होंने काम तो चालू किया है, मगर उनका जो काम है वो सफल होने के लिए मैंने अभी जैसे कहा कि ऐसे क्लस्टर्स बनाने चाहिए। आज हम सिर्फ एक जगह से श्रीहरिकोटा आइलैंड और सतीश धवन स्पेस सेंटर से उपग्रह छोड़ते हैं, दूसरा जो उपग्रह छोड़ने के लिए जो स्टेशन बना रहा है तमिलनाडु में वो भी अभी थोड़ी दिन के बाद चालू हो जाएगा। तो मुझे खातरी है कि जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो वहां से हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर आज देखें तो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की भी बहुत जरूरी है, और वो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप की थी वो इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो गई है। इसी तरह से हमारे जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को दे दी गई है। अभी ये इस साल में ही विक्रम 1 जो स्काई रूट ये इंडस्ट्री ने बनाया था वो सफलतापूर्वक कक्षा में उसने सैटेलाइट छोड़े हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है और मुझे खतरी है कि ऐसे काम करने वाले जो और भी दो वो आगे जाकर इस तरीके का काम कर सकेगा और इसरो जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए ये सब लोगों की मदद होगी।
जी प्रमोद जी, सरकार ने निजी कंपनियों को अनुमति दी है और अंतरिक्ष क्षेत्र नियामक संस्था तथा अंतरिक्ष विभाग की जो कमर्शियल भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है कि जिससे कि सभी को इस क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हो, और ऐसे समय में जब लगातार हम इसमें निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, लगभग मार्च 2026 तक $618 मिलियन का निवेश इसमें हुआ निजी क्षेत्र से, ये सफलता आपको कैसी लगती है?
ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इतने सब लोगों ने और इतने से पैसे खर्च करके वो आगे जा रहे हैं। इसको सफल होने के लिए उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, नई पॉलिसीज बनाई है, और ये पॉलिसी का जो उपयोग करके जो कुछ आगे करना होगा, तो इसके लिए हमारे जो एजुकेशनल क्षेत्र है, जो यूनिवर्सिटीज है, वहां भी इस तरीके का काम और होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमें ये सब काम करने के लिए लोगों की भी बहुत जरूरी पड़ेगी, और इंजीनियरों और बाकी सब लोगों की।
प्रमोद जी, विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है। जनवरी 2026 तक ऐसे प्रक्षेपणों की संख्या लगभग 400 तक पहुंच चुकी है, और हमारे लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी एक तरह से रहती है। तो ये जो हमारी कम लागत में अधिक प्रक्षेपण करने की संख्या है, हमारी तकनीक है, आधारभूत ढांचा है, ये हमारी क्षमताओं को किस तरह से प्रदर्शित करता है वैश्विक स्तर पर?
तो 2025 को मेरे ख्याल से दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक सबसे भारी, सबसे वजनदार ऐसा एक अमेरिकन उपग्रह हमने यहाँ से लॉन्च किया था LVM-3 का उपयोग करके। उसी तरह निसार जो सैटेलाइट है उसका भी लॉन्च किया है। मुझे खातरी है कि इस तरीके के काम हम जो अगर और भी कर सके तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और
प्रमोद जी, चंद्रयान की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज और चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 4 में चंद्रमा से नमूने लाने की योजना भी बनाई गई है। ये जो भारत के बढ़ते हुए कदम हैं, ये आपको कहाँ तक पहुंचते हुए दिखाई देना कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में कहाँ तक अपने कदम रखेगा, किस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे?
उम्मीद है कि ये जो चंद्रयान 4 का जो कार्य है वो बहुत ही सफलता पूर्वक हो जाएगा, और चंद्रमा के जो ऊपर के जो नमूने हैं वो लेके आएंगे। इसी तरह हम आगे जाकर गगनयान भी जो प्रक्षेपण होगा जिसमें क्रू नहीं होगा, मगर वो 2027 भी हो जाएगा, और उसके बाद जो गगनयान अच्छी तरह से चले तो उसके बाद जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी अच्छी तरह से काम कर सकेगा आगे जाकर। और ऐसा जो अंतरिक्ष स्टेशन जब हम बना सकेंगे तो उसके लिए ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो सबका सहभाग होना चाहिए।
गगनयान कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका कुल परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए किया गया है, और पहला मानव रहित परीक्षण अभियान 2026 की चौथी तिमाही और मानव युक्त अभियान 2027 तक लक्षित है। तो ये हमारे लिए उड़ान के दो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि तय समय सीमा में काम करना और सुरक्षा मानकों के साथ में काम करना। तो सरकार की इस व्यापकता, यानी कि सरकार की ये जो उपलब्धियां हैं, सरकार जिस तरह से इस दिशा में काम कर रही है, तो गगनयान अभियान हमें कहां तक पहुंचाएगा, क्या सफलता हमारे लिए इसकी मायने रखती है?
एक गगनयान जो ऐसा है कि कोई भी आज बच्चे के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। क्यों बनना है? तो उसको देखना है कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। सिर्फ इतना नहीं, मगर ये जो काम हम कर सके तो आगे जाकर इसका उपयोग हम मेडिसिन के लिए, वहां कुछ सामग्री बनाने के लिए भी कर सकते हैं, कि जैसे भी जीरो ग्रेविटी में जाकर किस तरीके से हम कोई भी मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि गगनयान जैसा प्रयोग हम करें और आगे जाकर जितने बच्चे हैं उनके सबके जो सपने होंगे वो हम पूरे कर सकेंगे।
स्पेडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेडेक्स के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में स्वचालित डॉकिंग की, अनडॉकिंग की क्षमता प्रदर्शित की है, जो चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या भारत अब अंतरिक्ष में उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने, नमूने स्थानांतरित करने और अंतरिक्ष यात्रियों के स्थानांतरण जैसी जटिल गतिविधियों की तकनीक विकसित करने की स्थिति में है? इन तकनीकों को भविष्य में भारत के द्वारा दूसरे देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है?
कर सकते हैं, मगर इसके लिए ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि जैसे कि आज हमारा एक उपग्रह है ऊपर, उसको जाके मिलकर उसमें ईंधन भरना है, तो ये दोनों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जो एक प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल से हम आगे जा सकते हैं, और ऐसे प्रोटोकॉल बाकी सब देशों के साथ भी जो हो सके, तो एक दूसरे को किसी का भी जो उपग्रह हो उसको जाके हम डॉक कर सके, और जो अगर ईंधन भरना है तो भर सकेंगे। मगर इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बाकी की और भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होने चाहिए कि जैसे उनके उपग्रह उसका एक्सेस मिलता चाहिए, तो इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए और भी हमें करार करने पड़ेंगे और आगे जाकर हमें काम करना पड़ेगा।
बिल्कुल। अब प्रमोद जी, मंगलयान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे निर्धारित 6 महीने के कार्यकाल के मुकाबले 8 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाला यान था, जबकि आदित्य L1 और एक्सपोसेट ने सूर्य तथा दूरस्थ खगोलीय पिंडों के अध्ययन में भारत की क्षमताएं बढ़ा दी हैं। तो गहरे अंतरिक्ष अभियान में इस तरह की जो हमारी व्यवस्था की जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो तकनीकी रूप से काफी जटिल फील होते हैं, तो इस तरह के अभियानों को प्राथमिकता देना हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह की दिशा तय करेगा, खासतौर पर अगर एजुकेशन की फील्ड से हम बात करते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगी?
एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों के लिए बात की आपने, उसकी बहुत जरूरत है कि आगे जाकर जो हमें देखना है कि मार्स पे जीवित व्यवस्था थी कि नहीं, क्यों वो चली गई, वीनस में क्या हो रहा है, तो ये सब के लिए उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए एजुकेशनल फील्ड रिसर्च करने वाले जो है उनको ये संसाधन हम दे सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मंगलयान है, आदित्य है, एक्सपोसैट है, तो हम देखते हैं कि हबल टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, अभी जो नया जो है ग्रीस रोमन टेलीस्कोप है, तो इन सब का उपयोग करके बाकी के देशों से जिस तरीके से काम हो रहा है, उसी तरह हम अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट है, अपने यहाँ के इंजीनियर से, उनके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं।
प्रमोद जी, अभी हाल फिलहाल की देखें कि बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटी हैं, तो ऐसे में ये समझना और जानना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पृथ्वी का अवलोकन और बेहतर तरीके से हो, ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकें। तो पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लगभग 1200 करोड़ रुपए के निजी निवेश प्रतिबद्धता के साथ पहला निजी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह विकसित किया जा रहा है। तो ये जो भागीदारी की जा रही है, इसमें मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, तो कैसे ये सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगी?
आज का ही जो उपग्रह छोड़ा है उसे हम देखते हैं, तो जो इतना जो रेजोल्यूशन मिल जाए कि कोई 50 मीटर का रेजोल्यूशन होगा और हम पूरी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। आज हम अपने जो मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, इनसैट सैटेलाइट के जो है, वहां से हम देख सकते हैं आज के मौसम क्या है, किस तरीके से ये क्लाउड मूव हो रहे, साइक्लोन कहाँ है, तो उसके लिए और भी ज्यादा जानकारी हम मिला सकते हैं। और ये जो आज का जो उपग्रह है वो उसका उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम जब पूरी तरह से निगरानी कर सके, तो हमें अभी तो पता चलता है कि कहाँ कुछ हो गया है, मगर वो हो जाने के पहले उसके जो कुछ संकेत हम मिला सके, तो उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हो जा सकता।
प्रमोद जी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारे पास श्रीहरिकोटा और तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में प्रक्षेपण स्थल है, तो इनसे क्या छोटे उपग्रहों और निजी क्षेत्र के प्रक्षेपणों को बढ़ावा मिलेगा? और ऐसे देश जो अपने यहाँ के बजाय हमारे यहाँ से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी सुविधा होगी इससे?
एक तो श्रीहरिकोटा आइलैंड, वहां से हम जब ये बड़े लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, LVM3 है, और वहां से अगर जो हम आगे जाकर गगनयान को भी लॉन्च करना है, तो वो उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और वहां का काम बढ़ जाएगा। और इसी के दौरान में जो कोई छोटा उपग्रह होता है, तो उसको हम दूसरे लॉन्च व्हीकल जो प्रक्षेपण क्षेत्र है वहां से लॉन्च कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही ख्याल आता है कि दोनों जगह से हम आगे जाकर और भी ज्यादा उपग्रह छोड़ सकते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने बनाया था, इसी तरीके की जो विक्रम 1 जो ये लोगों ने बनाया है, ये Skyroot 1, वो हम वहां से पूरी तरह से लॉन्च कर सकते हैं।
प्रमोद जी, भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने और उससे पहले हिस्से को 2028 तक अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है, तो इतने बड़े अंतरिक्ष ढांचे का निर्माण, रखरखाव, अंतरिक्ष यात्रियों के आवागमन, लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए भारत व्यवस्था किस तरह से आपको समझ में आती है आज के समय में?
सबसे महत्वपूर्ण उसका जो प्रोपेलेंट के लिए जो ईंधन लगता है, ये हम यहाँ ही बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। एक 90 से 95% तक का काम हम स्वदेशी पूरी तरह से कर सकते हैं। मुझे पूरी खतरी है कि इसी तरीके से हम आगे जाकर और भी काम कर सकेंगे। मैंने अभी पहले ही जिक्र किया था कि कुछ बात ऐसी होती कि जिसे टाइम सर करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्ट करना लगता है, और वो अच्छी तरह हो सकता है कि अगर जो हम उनके उपग्रह से लॉन्च करते हैं तो वो हमें फॉरेन एक्सचेंज, इसी तरह हमें भी कुछ बाहर से खरीदना पड़ सकता है। ये तो पूरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो गई।
प्रमोद काले जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।